दस धर्मों पर है, अलग अलग ढंग से विचार कर रहे हैं। और हमने पिछले दिनों अपने जीवन में यह अनुभव किया कि हमारे अंदर क्षमताएं अनंत हैं। हम चाहें तो अभी जितनी जल्दी हमें गुस्सा आ जाता है उतनी ही जल्दी हम क्षमा भाव भी धारण कर सकते हैं। जितना जल्दी हम अपना अपमान महसूस करने लगते हैं और अहंकारी हो जाते हैं, हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें तो उतनी ही जल्दी हमारे मन में विनय, कृतज्ञता और कोमलता जैसे गुण भी आ सकते हैं। सरलता आ सकती है, हम लोभ को जीत करके अपने जीवन को पवित्र भी बना सकते हैं। जीवन की सच्चाई, शरीर और आत्मा अलग अलग है, इसका हम एहसास करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और इतने ही नहीं, उस सच्चाई के रास्ते पर अपने जीवन को अनुशासित, व्यवस्थित और आत्मनियंत्रित करके चल भी सकते हैं। इन सब तरह की संभावनाओं को लिए हुए हम बैठे हुए हैं, लेकिन वे संभावनाएं हमारे भीतर प्रकट कैसे? हमारी अनंत संभावनाओं को प्रकट करने की कोई प्रक्रिया भी हमारे जीवन में हमें अपनानी चाहिए। जैसे एक भिखारी रास्ते के किनारे जीवन भर बैठा ऐसा सुनने में आया, एक उदाहरण पढ़ता था मैं। और वो भिखारी एक एक पैसा लोगों से मांगता रहा। एक दिन रास्ते के किनारे उसका प्राणांत हो गया। लोगों ने जैसे तैसे उसका दाह संस्कार किया। उस जगह की जब सफाई करने लगे तो जरा सा ऊपर की परतें हटाने पर, उन्हें थोड़ी थोड़ी जमीन खोदने पर सोने की सरफियां मिलना शुरू हुई। लोग चकित हुए कि कहां सोने की सरफियों पर बैठा हुआ और एक एक पैसे के लिए और तरसता रहा, भीख मांगता रहा। हमारे साथ भी शायद ऐसा ही घटित होता है। हमारी उस अनंत सामर्थ्य को भूल करके और हम अपने छोटे छोटे से भौतिक सुखों के लिए पता नहीं किस किस के सामने हाथ फैलाते हैं। हमारे हाथ फैलाने का ढंग भले ही अलग हो, भिखारी की तरह हम हाथ ना फैलाते हों, लेकिन हमारे अंदर जितनी भी इच्छाएं उठती हैं, जितनी आकांक्षाएं उठती हैं, वे एक तरह से दूसरे के सामने हाथ फैलाना ही तो है। हम देखें कि क्या हमारे भीतर ये जो अनंत शक्ति है उसे हम प्रकट कर सकते हैं, उसे हम तपस्या के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः, इच्छा निरोधः तपः। आचार्य भगवंतों ने अपने कर्मों से मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है उसे तप कहा है, या अपनी इच्छाओं को जीत लेने का नाम तप है। इस तप के द्वारा हम चाहें तो अपने जीवन की उन अनंत संभावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। एक छोटा सा आम के पेड़ में जब फल लगता है तो बहुत कड़ा हरे रंग का, और अगर उसको कोई चूसना चाहे तो मुंह और खराब हो जाए। और अगर वही आम के वृक्ष में लगा हुआ फल धीरे धीरे और पक जावे, परिपक्व हो जावे, तो क्या होता, उसमें उज्ज्वलता आती है, सरसता आती चली जाती है। जीवन में तप भी यही काम करता है। जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं को जीतते चले जाते हैं, इच्छाओं के नियंत्रण का नाम है संयम और इच्छाओं को जीत लेने का नाम है तप। इतना ही फर्क है। अभी कल तक हमने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया था, आज हम उन इच्छाओं से ही ऊपर उठने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। उससे क्या मिलेगा हमें? हमारी अनंत संभावनाएं प्रकट होंगी, इसके साथ साथ हमारे जीवन में परिपक्वता, सरसता और उज्ज्वलता, तीनों चीजें आएंगी। तपस्या ये काम करती है, जैसे कि फल धीरे धीरे आग, धूप आग की तरह ही तो है, धूप को सहन करता है, बारिश होती तो बारिश को सहन करता है, हवाएं चलती हैं तो उसको सहन करता है। इतनी हर प्रकार से बाधाओं को सहन करके जब पक जाता है, वो फल परिपक्व हो जाता, तब सरसता और उज्ज्वलता उसके भीतर आती है। ऐसे ही हम अपने जीवन में अगर तप को अंगीकार करते हैं तो हमारे जीवन में भी ये सारी क्वालिटी आनी शुरू होती है। ये सब हमारे भीतर हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें तो ये हमारे जीवन में प्रकट हो सकती है। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है? तपस्या का फल पहले बताना इसलिए अनिवार्य है ताकि हमें लगे कि हाँ, वास्तव में ये तप करने योग्य चीज है। तपस्या का उद्देश्य क्या है? कर्म क्षयार्थम, कर्मों का क्षय करना ही। कर्मों के क्षय करने के लिए ही जो किया जाता है वो सब तप है। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, वरना तप तीन तरह से किया जाता है, लोग करते भी हैं। एक तामसिक तपस्या, एक राजसिक तपस्या है, और एक सात्विक तपस्या है। तपस्या के मायने ये नहीं है कि हम आग में आग जला करके बैठ जाएं या आग में बैठ जाएं तो हम तपने लगे, या कि हम धूप में बैठ जाएं तो वो तप कहलाने लगेगा, या कि हम कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लें जिससे आकाश में उड़ने लगे, या कि पानी में चलने लगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने एक कहानी में लिखा कि वो साधु अपनी तपस्या के फलस्वरूप पानी पर चलने की सामर्थ्य प्राप्त कर चुका, आकाश में उड़ने की सामर्थ्य प्राप्त कर चुका। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि अरे, वर्षों आपने जल तरणी और आकाश में उड़ने की विद्या सीखी और वर्षों गमाए, सीधा उपाय करते और पक्षी हो जाते या कि मछली हो जाते तो आराम से उसी में रहते और आकाश में उड़ते या कि पानी में तैरते। मछली भी वही काम करती है जो आपने इतनी तपस्या से प्राप्त किया, और पक्षी भी वही काम करते हैं जो आपने उड़ने का अपनी तपस्या से। क्या तपस्या का उद्देश्य यह है? तामसिक तपस्या वो है जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा के विरुद्ध और अपने मनमाने ढंग से सिर्फ शरीर को तपाने के लिए की जाती है। वो सारी तपस्या तामसिक तपस्या है, जिसमें कि संक्लेश बना रहता है मन में, लेकिन शरीर से और हम विभिन्न क्रियाएं पढ़ते भी तो हैं अपन। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। अकेले शरीर को तपा लेने से काम नहीं होता, अंतरंग में हमारे अपने भावों में भी वैसी निर्मलता आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो वो सारी तपस्या तामसिक तपस्या कहलाएगी। और उसके साथ स्थिति ये भी है कि बिना देवगुरु शास्त्र की आज्ञा के, अर्थात उनके प्रति श्रद्धा के बिना जो तपस्या की जाएगी वो सब तामसिक तपस्या कहलाएगी। राजसिक तपस्या वो है जिसमें कि हम मान सम्मान और आगामी वैभव की कामना से करते हैं, वो सारी तपस्या राजसिक तपस्या है। मैं 10 दिन का उपवास करूंगा, 11वें दिन बढ़िया पाड़ना होगी। अरे वाह, तो पहले ही खा लेते ना हलवा, कहे को इतनी तो पक तकलीफ उठाई देगा, हलवा ही खाना था तो। कोई भी कह देगा ऐसी आकांक्षा से भरकर, यह मेरा मान सम्मान होगा, मेरी जय जयकार होगी, ऐसी कोई भावना मन के भीतर अगर आ जाती है तो वो सब सारी तपस्या राजसिक तपस्या कहलाएगी। और सात्विक तपस्या वो कहलाती जिसमें हम अपने परिणामों की निर्मलता, अपने कर्मों के क्षय की दृष्टि रखते हुए और शास्त्र में कही गई विधि गुरु की आज्ञा पूर्वक करते हैं, वो तपस्या सात्विक तपस्या है। सच्चे देवगुरु शास्त्र की आज्ञा के अनुरूप वीतरागता की प्राप्ति के लिए जो तपस्या की जाती है वो तपस्या ही सात्विक तपस्या है। हम लोग विभिन्न प्रकार से और तपस्या करते हैं, उसका उद्देश्य अगर हमें स्पष्ट नहीं है तो वो हमारी तपस्या हमें लाभकारी नहीं हो पाती। मैं एक उदाहरण हमेशा दिया करता हूँ, 1978 नैनागढ़ में आचार्य महाराज चतुर्मास कर रहे थे। संघ में उस समय कुल 3-4 साधु हुआ करते थे। समय सागर जी महाराज छुडलक थे, योग सागर जी महाराज छुडलक थे, नियम सागर जी महाराज छुडलक थे, इतने ही महाराज थे। एक अदप्पा जी हुआ करते थे और 2 ब्रह्मचारी और थे, उनके नाम तो मैं विस्मृत हो गया। बस इतना ही कुल संघ था। और समय सागर जी महाराज प्रारंभ से ही तपस्या में रुचि रखने वाले महाराज, तो हर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास लेंगे, तय था। नियम सागर जी महाराज को शारीरिक दुर्बलता और अस्वस्थता के कारण और उपवास इत्यादि नहीं ले पाते थे, थोड़ा बहुत कोई रस परित्याग कर लिया तो कर लिया, ऐसे करते थे, लेकिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते थे, आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार करते थे। एक बार क्या हुआ, अब आचार्य महाराज को तो सब प्रकार के तप करवाना है, 12 तप हैं, एक ही तप में माहिर होना तपस्या नहीं कहलाएगी, सब प्रकार से तप करना, बहिरंग तप भी करना, अंतरंग तप भी। आचार्य महाराज ने शुरू शुरू में हम लोगों को सब प्रकार के तप करके देख लो, जिसमें आसानी हो वो नहीं, जिसमें कठिनाई हो उसकी भी साधना करना। उपवास आसानी से हो जाता है तो ऊनोदर की साधना करना, ऊनोदर में कठिनाई होती है तो ऊनोदर की जरूर साधना करो। अपनी इच्छा से कम भोजन करके आना, और खाने की इच्छा थी नहीं, अब बस इतना ही रहूंगा, आधे पेट ही रहूंगा। और आगे बढ़ करके फिर कहते कि वृत्ति परिसंख्यान, तपस्या का तीसरा उससे भी कठिन है, उपवास और अवमोदरी से कठिन है वृत्ति परिसंख्यान। ऐसे ऐसे भोजन मिलेगा तो ही लूंगा, अन्यथा नहीं ग्रहण करूंगा। शुद्धि लेकर के चले गए हैं, सारे में चक्कर लगा करके आ गए हैं, थक गए हैं, और वृत्ति परिसंख्यान ऐसा लिया कि मिलेगी नहीं, और नहीं मिला और अलाभ हो गया। और शांत भाव से उतने ही प्रसन्न जितना कि लाभ में प्रसन्न होते हैं, उतने ही प्रसन्न चित्त पूरा दिन व्यतीत कर रहे हैं, तो वृत्ति पर संख्यान उससे कठिन, उससे कठिन रस परित्याग, 6 रसों का त्याग करके पूरा भोजन करके आना, भा नहीं रहा, नहीं भा नहीं रहा, वा नहीं रहा, नहीं, पूरा जितना रोज खाते उतने ही, लेकिन रस एक भी नहीं मिलेगा, ना नमक मिलेगा, ना शक्कर मिलेगी, ना दूध मिलेगा, ना घी मिलेगा, ना तेल मिलेगा, ना दही मिलेगा, कोई रस नहीं, और पेट पूरा भर के आओ, कठिन है मामला। तो ये क्रम क्रम से और कठिन। विविक्त सैयासन, एकांत मन बैठो, कोई से बोलो मत, कोई से मिलो मत, और कठिन है तपस्या। काय क्लेशः, ये बाह्यम तपः, ये सिर्फ बाह्य तप हैं जो दूसरों की दिखने में आ जाते हैं, या कि जिनमें बाह्य वस्तुओं का आलंबन लिया जाता है, या जिसको कि अन्य सभी मत मतांतर के लोग कर सकते हैं, ये बाह्य तप है। लेकिन अंतरंग तप, जिनमें की चेतना की निर्मलता और बाह्य आलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग, ये अंतरंग तप, इन अंतरंग तप की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहता जितना बाह्य तप की तरफ लोगों का ध्यान रहता। देखें अगर अपन, आचार्यों ने लिखा, बाह्ये तरोपाधि समग्रतेयम कार्येष बाह्यम तपः परम दुश्चरमाश्चरमस्तु माध्यात्मिकस्य तपसः परिवृंगनात्। हे भगवान, आपने बाह्य तप अंतरंग तपों की सिद्धि के लिए किए थे, मात्र बाह्य तप नहीं किया था आपने, आपने अंतरंग के परिणामों की निर्मलता के लिए तप अंगीकार किया था। प्रायश्चित ग्रहण करने, विनय भाव धारण करना, बड़े जनों की सेवा करना, वैयावृत तप है, अकेले पैर दबा देने का नाम नहीं है। अनुकूल परिस्थितियां निर्मित कर देना ताकि धर्म ध्यान में सहयोगी, जो भी त्यागी वृत्ति धर्म ध्यान कर रहे, उनके अनुकूल वातावरण निर्मित कर देना, यह वैयावृत्ति है। उन्हें चार प्रकार का दान इत्यादि देना भी भैया वृत्ति ऐसा नहीं समझना, लेकिन अंतरंग के भावों की निर्मलता के साथ की किया जावे भैया वृत्ति, तब वो तप कहलाए इस तरह। और फिर ध्यान भी एक तप है, वित्सर्ग शरीर से ममत्व छोड़ करके और समय व्यतीत करना पंच परमेश्वरी का स्मरण करते हुए क्रम क्रम से, ये सब कठिन चीजें हैं। मैं आपसे वो उदाहरण सुना रहा था, उस बीच में आपको इन सब 12 तपों की चर्चा इसलिए कर ली कि हम देखें कि हम किस में कमजोर हैं। अपन बच्चों को कहते तुमसे गणित नहीं बनती, तो गणित ज्यादा पढ़ेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो तुमसे बन जाती, उसको कम भी ध्यान दो तो वो तो तुम्हें आसान है, लेकिन तुमसे जो कठिनाई से बनता उसको पहले करो। ठीक इसी तरह अपन भी देखें कि हम कौन से तप आसानी से कर लेते हैं, किसमें कठिनाई होती, जिसमें कठिनाई होती वो भी करके देखो, थोड़ा थोड़े करके देखो। इस तरह से ये तप करने की प्रक्रिया आचार्य भगवान सबको सिखाना चाहते थे। उन दिनों मैं तो गृहस्थ जीवन में था, 78 में आचार्य महाराज के दर्शनार्थ जाया करता था, तो बैठा हुआ था आहार के बाद वहीं पर महाराज के पास, तो सब महाराज जी अब तो बड़ा संघ हो गया, तो सभी लोग अब आहार के तुरंत बाद नहीं आते आचार्य श्री के पास, 11:30-12 बजे आते हैं और सबको बताना पड़ता है कैसा हुआ आहार, ठीक हुआ ये कहना पड़ेगा, अंतराय हुआ तो अंतराय, चीटी आई है तो प्रायश्चित, या जो भी आया है तो उसके हिसाब से आचार्य महाराज बताएंगे। आगे के लिए जो लेना है उसी दिन ले लिया जाता है, आचार्य महाराज के चरणों में लिया जाता, अपने मन से नहीं। निवेदन क्या करना पड़ता, ऐसा नहीं करना पड़ता मेरा कल का उपवास है, ऐसे नहीं, आपकी आज्ञा हो तो कल उपवास करने का मन है, आपकी आज्ञा होगी तो, वरना मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि देव गुरु शास्त्र की आज्ञा पूर्वक ही करो। तो समय सागर जी महाराज ने निवेदन किया कि भगवान, जबकि हमेशा वे उपवास करते थे, सप्तमी का दिन थे, अष्टमी कल आने वाली थी मान लो, तो कहा कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो कल उपवास कर लो। वे तो सोच रहे थे हमेशा की तरह आशीर्वाद देंगे, लेकिन फौरन आचार्य श्री ने कहा उनोदर कर लो, और चुपचाप हाथ जोड़ करके नौवां नमोकार पढ़ा, कायोत्सर किया, ठीक है जैसी आपकी आज्ञा, उत्कृष्ट उनोदर कर लेना। उत्कृष्ट उनोदर मतलब जाकर के कोई सामान मत निकालना चौकी में से, सब ज्यों का त्यों धरे रहने देना, और खड़े होकर के जो सबसे पहले हाथ में दे दें, बस एक अंजुली में जो दे दिया उतना लेकर बैठ करके वापस आ जाए। उत्कृष्ट उनोदर तपस्या है, कर्मों के क्षय करने के लिए आसान नहीं है, इसलिए तो उपवास से ज्यादा कठिन है उनोदर। एक ग्रास हाथ में लेकर के जो भी दे दिया, दूध दे दिया तो दूध, पानी दे दिया तो पानी, रोटी का ग्रास रख दिया, कुछ नहीं बोला, बड़े प्रसन्न लोग जब हम लोग मुक्तागिरी में किया करते थे, अब तो छूट गया, थोड़ा बहुत कर पाते हैं। उत्कृष्ट उनोदर करते थे तब सब सामान रखने दिया, रखा रहने दिया, बड़े लोग प्रसन्न, आज तो कुछ नहीं हटवाया, आज तो सब रखा है, और जैसे ही खड़े हुए एक ग्रास लिया बैठ गए, अंतराय आ गया क्या, अंतराय आ गया, अंतराय अंतराय नहीं आया, इतना ही लेना था। उत्कृष्ट उनोदर, तो आचार्य श्री की आज्ञा का पालन उत्कृष्ट उनोदर कर लेंगे। अब आ गया नंबर नियम सागर जी महाराज का, तो उन्होंने सोचा, उन बहुत वो कभी उपवास नहीं करते थे, तो उन्होंने सोचा कि अपन तो जब इनको उपवास नहीं दे रहे तो अपन उनोदर मांगो, तो उन्होंने कहा महाराज मैं उनोदर कर लूं, तुम उपवास कर लो। आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार करना, कहने का उद्देश्य यह था कि सात्विक तब वो कहलाता है कि जिसमें जैसा गुरु कहते हैं हमारी वे सामर्थ्य जानते हैं, जैसे कि मां अपने बच्चों की स्थिति पहचान करके उनके लिए उनके अनुसार और खान पान की व्यवस्था करती है, छोटा बेटा दौड़ करके आता है, अम्मा हमको भी दूध दो, हाँ दो, उस दूध में धीरे से पानी डाल देती, और बड़ा वाला बेटा आता है तो धीरे से मलाई खिसका देती उसमें, तो छोटा बेटा कहता कि ये पक्षपात, बड़े भैया को आपने मलाई डाल करके दिया और हमको मलाई तो डाली नहीं, तो पानी डाल दिया, तो मां धीरे से कान पकड़ती कि इतना ही तो पचा लो, गड़बड़ हो जाएगी, यही तो पचेगा नहीं, तो मलाई डाल करके तब खाना, जब थोड़ा बड़े हो जाओ बुद्धि का काम करने लगो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो पचा लेता है। इसलिए हम भी जो है तपस्या स्वीकार करें तो गुरु के चरणों में बैठ करके स्वीकार करें, हम देखें कि हमारी सामर्थ्य क्या है और गुरु हमें कितना व्रत इत्यादि करने के लिए आशीर्वाद देते हैं। अगर हम उस प्रक्रिया से अपने जीवन में करेंगे तो अहंकार नहीं आ सकता। ये क्यों हमें रखा कि हम आचार्यों की आज्ञा से, गुरुओं की आज्ञा से हम तपस्या करें, हम हमें जितनी करनी उतनी कर लेंगे, कहते ऐसे करने में और अहंकार आएगा कि मैंने जो तपस्या की है वैसी किसी ने भी नहीं की, मैंने की। राजसिक तप में यह भी शामिल है कि इस अपेक्षा से करना कि उन्होंने 10 उपवास किए थे, मैं 11 करके बता सकता हूं। जैसे नहीं करते वो लोग कि हमने 10 रसगुल्ले खाए तो हम 15 खा के बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि मैं कंपेयर करूं और कंपटीशन करूं। तपस्या के मायने हैं जैसी आज्ञा है गुरु की वैसा ही, मेरी सामर्थ्य मैंने बता दी, इसके बाद आपकी आज्ञा जैसी होगी वैसा करूंगा। इस दृष्टि से जो तपस्या की जावे वो तपस्या ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाने वाली तपस्या है। अब देखें कि वाणी का तप क्या है, शरीर का तप क्या है और मन का तप क्या है। इन तीनों प्रकार से तपस्या अपने को करनी, 12 प्रकार के तप तो तपना है, ये तो अपन ने देख लिया कि 12 प्रकार के तप होते हैं, 6 बाह्य तप है, 6 अंतरंग तप है। हमारी अपनी सामर्थ्य से हमें उनको ग्रहण करना चाहिए और अपनी शक्ति को देख करके करना चाहिए। शरीर का तप वो है जिसमें हम शरीर से झुकते हैं। शरीर से झुकना पूज्य पुरुषों के प्रति शरीर से विनय धारण करना, ये शरीर का तप है। शरीर से व्रत उपवास करने पर बाधा आने पर सहन करना, ये शरीर का तप है। और शरीर के द्वारा वीतरागी भगवान की और धर्मात्मा जनों की सेवा करना, ये शरीर का तप है। अब बताइए अपन शरीर का तप कर सकते हैं आसानी से? कैसे? अपने शरीर से हम जितना हो सके देव गुरु शास्त्र की सेवा करें। देव की सेवा मतलब पूजा, शास्त्र की सेवा मतलब अध्ययन शास्त्र का, और गुरुजनों की सेवा जब पैर दबाने का वक्त हो जब पैर दबाएंगे, आहार दान देने का हो आहार दान देंगे, और उनको शांति से उनके धर्म ध्यान में जो भी सहयोगी होगा वो करेंगे, ये शरीर से सेवा हो गई। जरूरी नहीं है कि धन से ही सेवा हो, हाँ शरीर से भी ये सेवा, हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और कोई आज्ञा, ये शरीर की सेवा। हाथ जोड़ना, झुकना, सहन करना, अपन ने कोई व्रत ले लिया और गुरु ने हमें आशीर्वाद भी दे दिया पर फिर भी कर्म का उदय आ जावे और सहन नहीं हो रहा, तब भी सहन करना, मैंने लिया है तो मैं अपने शरीर से सहन करूंगा, विपत्ति आने पर भी सहन करूंगा। तो शरीर की सहन शक्ति बढ़ाना भी शरीर का तप है, शरीर की विनय भी शरीर का तप है, और शरीर से सेवा करना भी तप है। और वाणी का तप क्या है? कहते हमेशा सूत्र वचन बोलना, शास्त्र के अनुकूल बोलना, यह वाणी का तप है। अब बताइएगा शास्त्रानुसार जैसा भगवान ने तत्व का प्ररूपण किया है वैसा करना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि सफर कल्याण के लिए जो आचार्य भगवंतों ने कहा है उसके अनुरूप ही मैं बोलूं, चाहे सांसारिक क्षेत्र हो चाहे धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हर स्थिति में ये वाणी का तप आसान नहीं है, कठिन है। तभी तो कर्मों की निर्जरा होगी। और फिर कह रहे हैं कि मन का तप यानी हमेशा भावों की निर्मलता बनाए रखना, क्रोध मान माया लोभ ये कषायें जल्दी से मन में डेरा डाल लेती हैं, सावधान रहना। सावधान रह करके इनको जो है अपने मन में डेरा न डालने देना, और अगर आ भी जावे तो जल्दी से इनको सबसाइड कर देना, हटा देना और अपने मन को पुनः निर्मल कर देना। जैसे समुद्र में कचरा फेंका जाता है, समुद्र लहरों से 10 मिनट के अंदर उठा के उसको फिर किनारे पर फेंक देता है, ऐसे ही कह रहे हैं कि मन में अगर कषाय भाव उत्पन्न हो जाए अंतर्मूर्त के भीतर उसको एक तरफ हटा करके फिर से निर्मल हो जाना, ये तपस्या है। इस तरह की तपस्या करने का अपन लोग सोचते ही नहीं है। मन में क्रोध किसके नहीं आता, आ गया कोई बात नहीं, जल्दी जितनी जल्दी हटा सको हटाओ, कौन पड़े झगड़े में, ऐसा विचार करें तो ये तपस्या कहलाएगी। ये कठिन है तपस्या, आलू छोड़ना आसान है, और चीजें हैं खा लेंगे, आलू छोड़ दिया, आलू कितने अल्टरनेट हैं, हम तो सोच रहे थे कि समोसा और आलू के वो बनते वो सब छूट गए होंगे, लेकिन सब केला भर भर के खाए जा रहे हैं, ज्यों के त्यों कुछ नहीं छूटा, बस अकेला वो केले की आलू की जगह केला भरा जाने लगा, बाकी तो आइटम वही है, खाने की लोलुपता वही है, आसक्ति ज्यों की त्यों है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर देखा जाए इस दृष्टि से ये तपस्या नहीं कहलाएगी।